रेडियो नेपाल है। अब मुकेश कुमार मिश्र से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। अनुचित लेनदेन तथा मीटर ब्याज पीड़ितों की मांगों के समाधान के लिए सरकार ने की वार्ता समिति गठित। प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने महिला उद्यमी महासंघ के प्रतिनिधियों के साथ किया विचार विमर्श। कहा, सरकार महिला उद्यमिता के विकास में सहयोग के लिए है प्रतिबद्ध। शिक्षा मंत्री सस्मित पोखरियाल ने कहा, नई पीढ़ी और तकनीक को ध्यान में रखकर लाया जाएगा शिक्षा संबंधी विधेयक। और अमेरिका ने ईरान के उत्तरी ठिकानों को बनाया निशाना। जवाब में ईरान ने अमरीकी सहयोगी देशों पर किया हमला। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने अनुचित लेनदेन तथा मीटर ब्याज पीड़ितों की मांगों के समाधान के लिए वार्ता समिति गठित की है। आज सिंह दरबार में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक ने प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद कार्यालय के सचिव पुष्कर सापकोटा के संयोजकत्व में वार्ता समिति गठित करने का निर्णय लिया। सूचना तथा संचार मंत्री डॉ विक्रम तिमिल सिन्हा ने ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि समिति में अर्थ मंत्रालय, गृह मंत्रालय तथा भूमि व्यवस्था, सहकारी संघीय मामला एवं सामान्य प्रशासन मंत्रालय के सहसचिव सदस्य होंगे। मंत्रिपरिषद ने 1 और 2 रूपये के नए डिजाइन के सिक्के ढालने के लिए नेपाल राष्ट्र बैंक को स्वीकृति देने तथा नेपाल कानून सूचना पायलट प्रणाली की स्थापना के लिए कोरिया सरकार से प्राप्त होने वाली 1.81 मिलियन अमेरिकी डॉलर की अनुदान सहायता स्वीकार करने का भी निर्णय लिया। बैठक ने यह भी निर्णय लिया कि संरक्षित क्षेत्रों के भीतर राष्ट्रीय वन क्षेत्र में जहां पहले से मंत्रिपरिषद की स्वीकृति प्राप्त परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त पेड़ या बिजली के पोल हटाने की आवश्यकता होगी, वहां प्रचलित कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद संबंधित मंत्रालय स्वयं अनुमति दे सकेगा। इसके अलावा विभिन्न मंत्रालयों के संगठनात्मक ढांचे और दरबंदी को स्वीकृति देने, नीति अनुसंधान प्रतिष्ठान विकास समिति गठन प्रथम संशोधन आदेश 2083 को मंजूरी देने तथा सेवा करार पर कार्यरत कर्मचारियों के प्रबंधन संबंधी व्यवस्था को स्वीकृति देने सहित कई अन्य निर्णय भी किए। प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने कहा है कि सरकार महिला उद्यमियों के उद्यमशीलता विकास के लिए हर संभव सहयोग करने के लिए प्रतिबद्ध है। आज प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद कार्यालय में महिला उद्यमी महासंघ नेपाल के पदाधिकारियों के साथ हुई विस्तृत चर्चा में उन्होंने कहा कि सरकार महिला उद्यमियों की समस्याओं का समाधान करेगी और उनके उत्पादों को देश के प्रत्येक पर्यटन स्थल तक पहुंचाने और उनका प्रचार प्रसार करने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करेगी। चर्चा के दौरान महासंघ के प्रतिनिधियों ने व्यवसाय के लिए अनुकूल वातावरण सुनिश्चित करने, वस्तुओं और सेवाओं को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाने के लिए विशेष कार्यक्रम संचालित करने तथा व्यापार मेलों, प्रदर्शनियों, बिजनेस टू बिजनेस मैचिंग और निर्यात प्रोत्साहन कार्यक्रमों में अनिवार्य भागीदारी सुनिश्चित करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह और राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी के अध्यक्ष राजेंद्र लिंगदेन के बीच आज मुलाकात हुई। प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद कार्यालय में हुई इस मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं के बीच समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रम सहित विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई। बैठक में रापरपा के अध्यक्ष राजेंद्र लिंगदेन के साथ पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष बुद्धिमान तामांग तथा केंद्रीय सदस्य एवं प्रतिनिधि सभा सदस्य खुशबू ओली भी उपस्थित थे। संपत्ति छानबीन आयोग ने संपत्ति विवरण संग्रह और जांच संबंधी सभी कार्य फिलहाल स्थगित कर दिए हैं। आयोग ने आज सूचना जारी कर कहा कि सर्वोच्च अदालत के 31 आषाढ़ के आदेश के अनुसार रीट याचिकाओं पर अंतिम फैसला आने तक सभी प्रक्रियाएं रोकी गई हैं। बता दें कि आयोग पूर्व न्यायाधीशों, संवैधानिक आयोगों और नेपाली सेना के पूर्व अधिकारियों को छोड़कर अन्य पूर्व सार्वजनिक पदाधिकारियों की संपत्ति का विवरण एकत्र कर रहा था। शिक्षा तथा खेलकूद मंत्री सस्मित पोखरियाल ने कहा है कि सरकार देश की शिक्षा प्रणाली में सुधार के लिए दीर्घकालीन योजना के साथ ठोस कदम उठा रही है। चितवन के भरतपुर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि शिक्षा क्षेत्र का वैज्ञानिक और व्यवस्थित रूप से रूपांतरण किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि शिक्षा संबंधी नया विधेयक भविष्य की पीढ़ी और आधुनिक तकनीक को ध्यान में रखकर लाया जाएगा। मंत्री पोखरियाल ने यह भी कहा कि विदेश अध्ययन के लिए जाने वाले विद्यार्थियों को उचित परामर्श उपलब्ध कराने और शिक्षा क्षेत्र को अधिक व्यवस्थित बनाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। समाचार आप रेडियो नेपाल से सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
बाजू दर्शन
भाग्यवानी बाबू राम्ररी आइपुग्नु भयो नि।
हजुर राम्ररी पुगे। ऊ चाहिँ मेरो कलेजको बेस्ट फ्रेन्ड।
नमस्ते बाजू।
नमस्ते। आउनु न भित्रै।
हुन्छ बाजू।
अनि दादा त अफिस गइसक्नु भयो होला है?
उहाँ त बिहानै हो, हुन्छ तपाईँहरू फ्रेस हुँदै गर्नु न, म खाना तयार गर्दै गर्छु है।
हस् हस् भाउजू।
ओए वाइफाई होला नि, पासवर्ड माग्न।
त पनि एनटिसी को सस्तो डे प्याक छँदैछ नि।
ए हो र,
एनटिसी को डे प्याक लिन *14## डायल गर्न।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। सार्वजनिक सेवा प्रसारण नेपाल की संचालक समिति में उर्वशी बस्नेत और शोभिता रिसाल को सदस्य नियुक्त किया गया है। सूचना तथा संचार मंत्री डॉ विक्रम तिमल सिन्हा ने दोनों को नियुक्ति पत्र प्रदान करते हुए संविधान और कानून के अनुरूप निष्पक्ष, जवाबदेह और जनहित मुखी ढंग से कार्य करने का निर्देश दिया। अध्यक्ष की नियुक्ति होने तक संचालक समिति के सदस्य उर्वशी बस्नेत को बोर्ड की बैठकों की अध्यक्षता करने की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। मंत्री तिमल सिन्हा ने रेडियो नेपाल और नेपाल टेलीविजन के ऐतिहासिक योगदान का जिक्र करते हुए सार्वजनिक सेवा प्रसारण नेपाल को और प्रभावी बनाने पर जोर दिया। परराष्ट्र मंत्री शिशिर खनाल ने खनाल से भारत के विदेश मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव मुनु महावर ने आज मुलाकात की। दोनों के बीच नेपाल भारत के पारस्परिक हितों, दीर्घकालीन मैत्रीपूर्ण संबंधों और बहुआयामी साझेदारी को और मजबूत बनाने पर चर्चा हुई। साथ ही उच्च स्तरीय संपर्क और संवाद को निरंतर बनाए रखने पर भी सहमति बनी। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मंत्री गौरी कुमारी यादव ने अमेरिकी कार्यवाहक राजदूत स्कॉट अरबम से मुलाकात के दौरान नेपाली उत्पादों की अमेरिकी बाजार तक पहुंच सुनिश्चित करने का आग्रह किया। उन्होंने जलविद्युत, नवीकरणीय ऊर्जा, पर्यटन, कृषि प्रशोधन, उत्पादन मूलक उद्योग और डिजिटल अर्थव्यवस्था जैसे क्षेत्रों में अमेरिकी निवेश बढ़ाने पर भी जोर दिया। अमेरिकी पक्ष ने व्यापार सुविधा और निवेश प्रवर्धन के प्रति सकारात्मक रुख व्यक्त किया। शिक्षा तथा खेलकूद मंत्री सस्मित पोखरेल और नेपाल के लिए जापान के राजदूत मायदा तुरू के बीच आज शिक्षा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। बैठक में सुरक्षित विद्यालय, डिजिटल और स्मार्ट लर्निंग, शिक्षकों की क्षमता विकास तथा विद्यालय स्वास्थ्य और पोषण जैसे क्षेत्रों में सहयोग की संभावनाओं पर विचार विमर्श हुआ। जापानी राजदूत ने नेपाल के सार्वजनिक शिक्षा सुधार पहल में निरंतर सहयोग का भरोसा दिलाया। युवा, श्रम तथा रोजगार मंत्रालय ने आंतरिक रोजगार के अवसर बढ़ाने के उद्देश्य से निजी क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा की। बैठक में कार्यस्थल आधारित प्रशिक्षण और प्रशिक्षु कार्यक्रमों को प्रभावी बनाने पर जोर दिया गया। निजी क्षेत्र ने नीति निर्माण से लेकर प्रशिक्षण और प्रमाणीकरण तक अपनी भागीदारी बढ़ाने की मांग की। श्रम मंत्री रामजी यादव ने कहा कि सरकार निजी क्षेत्र को केवल दर्शक नहीं बल्कि विकास का साझेदार मानते हुए समन्वय के साथ आगे बढ़ेगी। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। अमेरिका ने ईरान पर हमले और तेज कर दिए हैं। आज सुबह किए गए हमलों में उत्तर में स्थित ठिकानों को निशाना बनाया गया और अमेरिकी नौसैनिक नाकाबंदी तोड़ने की कोशिश कर रहे एक जहाज पर भी गोलीबारी की गई। जवाब में ईरान ने क्षेत्र में अमेरिका के सहयोगी देशों को निशाना बनाते हुए मिसाइल और ड्रोन हमले किए। ईरानी अधिकारियों का कहना है कि हाल के अमेरिकी हमलों में 35 से अधिक लोग मारे गए हैं और 300 से अधिक घायल हुए हैं। पहली बार राजधानी तेहरान के आसपास के इलाकों में भी हमले हुए हैं। अमेरिकी हमलों में सेमनान प्रांत में ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल उत्पादन और अंतरिक्ष कार्यक्रम के केंद्र को निशाना बनाया गया। ईरानी सेना के प्रवक्ता कर्नल इब्राहिम जोल्फागरी ने धमकी दी है कि अगर अमेरिका ईरान में पुलों और बिजली संयंत्रों को निशाना बनाता है तो ईरान क्षेत्रीय बुनियादी ढांचे पर व्यापक हमले कर सकता है। प्रवक्ता ने कहा कि किसी भी परिस्थिति में अमेरिका को होर्मुज जलडमरू मध्य में हस्तक्षेप की अनुमति नहीं दी जाएगी। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 27 से 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 29.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 21.5 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अनुचित लेन देन तथा मीटर ब्याज पीड़ितों की मांगों के समाधान के लिए सरकार ने की वार्ता समिति गठित। प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने महिला उद्यमी महासंघ के प्रतिनिधियों के साथ किया विचार विमर्श। कहा सरकार महिला उद्यमिता के विकास में सहयोग के लिए है प्रतिबद्ध। शिक्षा मंत्री सस्मित पोखरेल ने कहा नई पीढ़ी और तकनीक को ध्यान में रखकर लाया जाएगा शिक्षा संबंधी विधेयक। और अमेरिका ने ईरान के उत्तरी ठिकानों को बनाया निशाना, जवाब में ईरान ने अमेरिकी सहयोगी देशों पर किया हमला। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभ रात्रि।